आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय गति। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 10वां अध्याय है। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास कई सारे वस्तुओं को अलग अलग प्रकार की गति करते हुए देखा होगा। गति का क्या मतलब होता है? गति होता है किसी भी वस्तु या फिर किसी भी जीव की स्थिति में परिवर्तन होना, उसी को गति कहते हैं। समय के बाद, कुछ समय के बाद अगर किसी वस्तु या फिर किसी जीव के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि वो वस्तु या फिर वो जीव गति कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे या फिर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चल करके जाते हैं तो वो कुछ गति करके जाते हैं, वो अपने कदमों से चल करके जाते हैं। तो चलना जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे? एक प्रकार की गति की प्रक्रिया कहेंगे। और जब व्यक्ति चल रहा है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गति कर रहा है। ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि वो व्यक्ति चल करके जब एक जगह से दूसरे जगह पर गया तो कुछ समय बाद उसकी स्थिति बदल गई। वो एक जगह से दूसरी जगह पर गया और कुछ समय बाद उसकी स्थिति बदल गई, इसलिए हम कहेंगे कि वो व्यक्ति जरूर गति कर रहा है। तो जब आप लोग स्कूल जाते हैं अपने घर से, तो उस वक्त भी आप गति करते हुए अपने घर से स्कूल जाते हैं और आपकी पोजीशन यानी कि आपकी स्थिति बदल जाती है। पहले आप घर पे होते हैं, बाद में कुछ देर बाद आप स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो आपकी स्थिति बदल गई। जिस जगह पर आप मौजूद थे वो जगह बदल गई क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पर गति करके पहुंच गए। इसी तरीके से अगर हम बंदरों के बारे में बात करें तो जो बंदर होते हैं वो जब कूदते हैं तो वो पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि बंदर जो है वो गति कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। पहले किसी और डाल पर थे, थोड़ी देर बाद वो दूसरी डाल पर आ गए, तो हम कहेंगे कि वो भी गति कर रहे थे। इस तरीके से अगर कोई और जीव है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार की गति है। दौड़ना जो होता है वो भी एक प्रकार की गति करने की प्रक्रिया होती है। सांप जब रेंग करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो वो भी गति कर रहा होता है। मछली जब तैर करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो वो भी गति कर रही होती है। तो इन सभी में क्या आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। और इसमें तो आपने देखा इन सारे उदाहरणों में कि जो वस्तु या फिर जो जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि गति करने के लिए किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। बस ये होता है कि उस वस्तु की पोजीशन, उसकी स्थिति बदल जानी चाहिए। पहले जिस स्थिति में वो था, थोड़ी देर बाद अगर वो किसी और स्थिति में आया है तो इसका मतलब जरूर उस वस्तु ने या फिर उस व्यक्ति ने या फिर उस जीव ने गति की है। जैसे अगर हम लोग बात करें लट्टू जो होता है, लट्टू जब गोल गोल घूमता है तो हर एक सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन बदलती रहती है। ऐसा तो है नहीं कि लट्टू रुका हुआ होता है, अगर वो रुका होगा तो उसकी पोजीशन बदलेगी नहीं, उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु घूम रही है गोल गोल तो उसकी पोजीशन लगातार हर एक सेकेंड पर बदलती रहती है, और ये भी एक प्रकार की गति करने की प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से आप लोगों ने दीवार घड़ी देखी होगी जिसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है, तो पेंडुलम जो आगे पीछे होता रहता है वो भी एक प्रकार की गति करने की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या है कि जो पेंडुलम है वो फिक्स्ड है, घड़ी में फिक्स्ड है, लेकिन उसकी गति कैसी हो रही है? उसकी गति हो रही है आगे पीछे, इस तरीके की गति जो होती है वो भी हम लोग गति में ही गिनते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि गति करने के लिए किसी वस्तु को एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर पहुंचना होगा। गति करने का सिंपल मतलब ये है कि वस्तु या फिर व्यक्ति या फिर जीव जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। जिस पोजीशन में वो पहले था, थोड़ी देर बाद उसको अपनी पोजीशन को बदलना होगा अगर उसे गति करनी है तो। और यहाँ पर आप लोगों ने जो पेंडुलम के बारे में पढ़ा, तो पेंडुलम आगे पीछे होती रहती है, तो थोड़ी देर पहले मान लीजिए वो आगे थी, कुछ देर बाद वो पीछे हो जाती है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो है, उसकी स्थिति जो है वो बदल जाती है आगे पीछे होने की वजह से। और आगे पीछे होने की प्रक्रिया को हम गति की प्रक्रिया में गिनते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे आप लोगों ने अपनी घड़ी में देखा होगा, घड़ी में आपकी जो सुई है वो टिक टिक करके गोल गोल घूमती है, तो वो भी एक प्रकार की गति करने की प्रक्रिया होती है क्योंकि हर एक सेकंड के बाद आपकी सुई की स्थिति बदल जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की या व्यक्ति की या जीव की पोजीशन बदल जाए कुछ समय के बाद, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति, वस्तु या फिर जीव गति कर रहा है। तो गति को आप सिंपल भाषा में बस ये समझेंगे कि कुछ समय बाद अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या जीव की पोजीशन, स्थिति बदल जाती है, तो इसका मतलब है कि वो वस्तु, व्यक्ति या जीव गति कर रहा है। अब देखो, गति करने की प्रक्रिया जो होती है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम ही प्रक्रिया है, हर कोई सेम ही प्रक्रिया कर रहा है। कुछ लोग होते हैं जो चल करके गति कर सकते हैं, या फिर दौड़ करके गति कर सकते हैं, तैर के भी गति कर सकते हैं, कूद के गति कर सकते हैं, गोल गोल घूमना भी गति होता है, पेंडुलम का आगे पीछे होना भी गति होता है, हमारी जो लट्टू है उसका अपनी धुरी पर घूमना भी एक प्रकार की गति होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि गति जो होती है वो कई प्रकार की होती है। इतनी ज्यादा प्रकार की गति जो होती है, उसी को हम लोगों को इस अध्याय में एक एक करके पढ़ना है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में। और सबसे पहला हम लोग सरल रेखीय गति पढ़ेंगे। और सरल रेखीय गति क्या होती है, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको एक गतिविधि करनी है, गतिविधि एक। ये गतिविधि है पेज नंबर 85 पर। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है, कुछ ऊंचाई पर आपको जाना है। पहले आप अपने स्कूल के बिल्डिंग में होंगे, वहीं पर आप खिड़की से आपको उस छोटे पत्थर को नीचे गिरा देना है। आप ध्यान से गिराइएगा कि किसी व्यक्ति को चोट ना लगे। और इस तरीके से आप लोग जब उस पत्थर को गिराएंगे, तो आप ध्यान से जब उस पत्थर की मोशन को देखेंगे, उसकी गति को देखेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो जो पत्थर आपने गिराया है वो बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे जाके जमीन पे गिर गया। ऐसा नहीं है कि जब आप पत्थर को गिराते हैं तो वो गोल गोल घूम करके नीचे जाके गिरता है। जैसे ही आप उसको नीचे गिरा देते हैं, तो वो सीधा सीधा सीधी लाइन में ही नीचे जाके जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार की गति जो होती है, जिसमें वस्तु सीधी लाइन में चल रही है या सीधी रेखा में गति कर रही है, उसी को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके काफी सारे उदाहरण हो सकते हैं। जब आप लोग सीधी रोड पर चलते हैं, तो उसमें भी आप लोग कह सकते हैं कि वो भी एक सरल रेखीय गति है, क्योंकि आप उसमें सीधी रोड पर चल रहे हैं और आपकी जो गति की दिशा है वो बिल्कुल सीधी है, वो टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सीधा आप जब चलते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप भी सरल रेखीय गति कर रहे हैं। इसी तरीके से जब कार जो होती है वो सड़क पर सीधी रेखा में बिल्कुल चलती है, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि वो भी सरल रेखीय गति कर रही है। सरल रेखीय गति को आप लोग इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। सीधी रेखा में जब गति की जाती है, तो उसी को सरल रेखीय गति कहते हैं। और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे जब आप लोग फिसल पट्टी से फिसलते हैं, तो उसमें भी आप लोग फिसल पट्टी से सीधा ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो इस प्रकार की जो गति है इसको भी आप लोग सरल रेखीय गति कह सकते हैं। जब आपकी रेलगाड़ी सीधी पटरी पर चलती है, तो उसको भी हम लोग सरल रेखीय गति समझ सकते हैं। और इसी तरीके से काफी सारे उदाहरण हैं, जो सिपाही सीधे सीधे मार्च कर रहे होते हैं, उसको भी हम लोग सरल रेखीय गति में गिन सकते हैं। या फिर आप लोगों की जब रेसिंग की टेस्ट होती है, कंपटीशन होती है, तो उसमें आप लोग जब स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे होते हो, सीधी रेखा में दौड़ रहे होते हो, तो उसको भी आप लोग सरल रेखीय गति के रूप में समझ सकते हो। तो इसके काफी सारे उदाहरण हैं, आप लोग को कहीं पर भी दिख जाएगा। जब चींटियां चल रही होती हैं सीधी रेखा में, वो गति भी आप लोग सरल रेखीय गति के रूप में समझ सकते हो। और इस तरीके से आप लोगों को खुद भी सोचने हैं कि क्या क्या और उदाहरण हो सकते हैं सरल रेखीय गति के। और यहाँ पर आप लोग चित्र देख लो, पेज नंबर 86 पर आप लोगों को चित्र में भी दिखाया गया है, अलग अलग प्रकार की सरल रेखीय गति के उदाहरण आपको दिए गए हैं। सीधी रेखा में जब वाहन गति करती है, वो भी उदाहरण के रूप में बताया गया है। फिसल पट्टी पर जब आप लोग फिसलते हो, वो भी सरल रेखीय गति में आता है। सीधी पटरी पर जब रेलगाड़ी दौड़ती है, तो वो भी सरल रेखीय गति में आता है। तो आप लोगों को सरल रेखीय गति समझ में आ गया। जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रहा हो, गति कर रहा हो, तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। अगली प्रकार की जो गति है वो है वृत्ताकार गति। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, वृत्ताकार मतलब गोल गोल घूमता हो। कोई वस्तु ऐसा है जो गोल गोल घूम रहा है और गोल गोल घूम करके वो गति कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया है वृत्ताकार गति। इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी से ही समझ में आ गया आपको कि सर्कल में घूम रही है जो वस्तु है, वो गोल गोल घूम रही है, और इस प्रकार की गति को आप लोग वृत्ताकार गति कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को गतिविधि करने के लिए कहा गया है, गतिविधि दो, ये पेज नंबर 86 पर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को एक धागा लेना है और एक पत्थर को आपको उससे बांध देना है। देखो ये गतिविधि भी थोड़ी सी अटपटी है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से करना, इसमें आप लोगों को चोट नहीं लगना चाहिए किसी बच्चे को। आप लोग ठीक से बिल्कुल अच्छे से उसको बांधेंगे, पत्थर को बांधेंगे। अगर आपको पत्थर नहीं बांधना है तो आप कोई और भी हल्की चीज बांध सकते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी भी ले सकते हो। माचिस की डिब्बी को आप लोग रस्सी से बांध दो, और उसके बाद रस्सी की एक साइड तो आपने माचिस की डिब्बी को बांधा हुआ है, दूसरी साइड जो रस्सी का एंड होगा उसको अपने हाथ से पकड़ लेना है, और अपनी माचिस की डिब्बी को उस रस्सी से बंधी हुई जो माचिस की डिब्बी है उसको गोल गोल घुमाना है। यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हो, चित्र 10.2 पेज नंबर 86, इसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरीके से जब आप लोग माचिस की डिब्बी को या पत्थर को रस्सी से बांधोगे, उसके बाद रस्सी को जब आप घुमाओगे तो आपकी माचिस की डिब्बी भी गोल गोल घूमेगी, और उस प्रकार की गति जो है, जब आपकी माचिस की डिब्बी गोल गोल घूम रही है, इसी प्रकार की गति को हम लोग वृत्ताकार गति कहते हैं, क्योंकि इस बार जो आपकी माचिस की डिब्बी है वो एक ऐसे पथ में घूम रही है, एक ऐसे रास्ते में घूम रही है जो गोल है, और ऐसे रास्ते में जब कोई वस्तु घूमती है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु वृत्ताकार गति दिखा रही है, वृत्ताकार गति कर रही है। साथ में आप लोगों ने कभी देखा होगा जो कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू के बैल को क्या करते हैं कि एक लंबी सी बांस से बांध दिया जाता है, और रस्सी से उसका गले का पट्टा बांध दिया जाता है, उसके बाद वो जो बैल होता है वो कोल्हू के चारों ओर गोल गोल घूमता है, और उस प्रकार की गति को भी आप लोग वृत्ताकार गति का उदाहरण के रूप में समझ सकते हो, क्योंकि कोल्हू का जो बैल है वो भी गोल गोल घूम रहा है, ऐसे पथ में घूम रहा है जो कि गोल है, आकार से गोल है, और इसीलिए हम कोल्हू के बैल की जो गति है उसको भी वृत्ताकार गति कह रहे हैं। साथ में आप लोग कभी झूला झूलने गए होंगे तो उसमें जो चक्री झूला होता है वो भी वृत्ताकार गति का उदाहरण हो सकता है। और कभी आप लोगों ने खेल खेला होगा, जब आप लोग सारे बच्चे गोलाई में बैठ जाते हैं और एक बच्चा जो होता है वो उस गोलाई के चारों ओर दौड़ता है, तो उस प्रकार का जो खेल होता है उसमें भी वो बच्चा जब गोलाई में दौड़ रहा है तो उसको आप कहेंगे कि वो वृत्ताकार गति कर रहा है। तो कई सारे उदाहरण आप लोग भी सोच सकते हो जिसमें वस्तु जो है वो गोलाकार पथ में चल रही हो, तो उस प्रकार की जो गति होगी वो वृत्ताकार गति कहलाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। वृत्ताकार का मतलब गोल, तो जब कोई भी वस्तु एक निश्चित गोल पथ में घूमती है तो हम कहते हैं कि वो वृत्ताकार गति कर रही है। अगली गति जो है वो है आवर्त गति, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप लोगों ने कभी घड़ी देखी होगी जिसमें पेंडुलम लगा हुआ होता है, तो जो पेंडुलम का मोशन होता है, पेंडुलम की जो गति होती है आगे पीछे जो होती रहती है, उसी को आवर्त गति कहते हैं। और उसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जो पेंडुलम होता है वो हमेशा थोड़ी देर बाद आगे, फिर थोड़ी देर बाद पीछे, फिर थोड़ी देर बाद आगे, फिर पीछे, फिर आगे, उसका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। तो इस प्रकार की गति में जो आगे पीछे होने का टाइम होता है वो फिक्स होता है, मतलब उस फिक्स टाइम के बाद वो पेंडुलम जो है एक बार आगे आएगी, फिर उसी फिक्स टाइम के बाद वो पीछे जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद वो आगे आएगी, तो टाइम यहाँ पर फिक्स्ड होता है, उस वस्तु के आगे पीछे होने का जो टाइम होता है वो निश्चित होता है। और इसीलिए इस प्रकार की गति में जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो रहा हो और उसका टाइम फिक्स्ड हो, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो आगे और पीछे करने की जो गति की प्रक्रिया है वो दिखा रहा है, तो हम उसको आवर्त गति कहते हैं। साथ में आप लोगों ने देखा होगा जो झूला आप लोग झूलते हो, जिसमें आप लोग आगे पीछे डोलने लग जाते हो, जब उसके ऊपर बैठ जाते हो तो वो झूला आगे पीछे होने लग जाता है, तो वो भी आप लोग उसको भी आवर्त गति का उदाहरण समझ सकते हो, क्योंकि उसमें भी आप लोग एक निश्चित समय के बाद आगे आते हो, फिर निश्चित समय के बाद आप पीछे चले जाते हो, तो इस प्रकार की जो गति होती है उसमें आप निश्चित समय के बाद अपने पथ को दोहराते हो, मतलब पहले भी आप आगे थे, थोड़ी देर बाद आप पीछे चले गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से आप आगे आ जाते हो, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने पथ को दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो ये प्रकार की जो गति होती है ये आवर्त गति कहलाती है। ऐसी गति में क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जो वस्तु होती है वो अपनी गति को दोहराती है, जहां पर वो पहले थी वहां पर वो थोड़ी देर बाद फिर से आ जाती है, और इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है आगे पीछे होना। यहाँ पर आप लोग चित्र भी देख सकते हो, पेज नंबर 87 पर आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को पेंडुलम जो होता है, अगर आप लोगों ने पेंडुलम कभी नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आपको घड़ी का चित्र दिया गया है। घड़ी में जो नीचे लटका हुआ सा दिखाई दे रहा है ना, लटकन सा जो दिखाई दे रहा है, वही पेंडुलम होता है, और वो आगे पीछे होता रहता है, और इस प्रकार के मोशन को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो बालक के झूले के ऊपर झूलने का उदाहरण दिया गया है, और इस प्रकार की जो गति होती है ये भी आवर्त गति कहलाती है। उसके बाद अगला हम लोग को पढ़ना है कंपन गति के बारे में। तो बच्चों आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा अर्थक्वेक, जो आपका भूकंप होता है, भूकंप आप लोगों ने महसूस किया होगा, तो वो जो कंपन होती है उसी को कंपन गति कहते हैं। जो अजीब सी भनभनाहट सी गति होती है उसे कंपन गति कहते हैं, इसको इंग्लिश में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। या फिर आप लोगों ने बड़ा वाला जो रेडियो सेट होता है जिसमें से बहुत तेज आवाज आती है, जब उसको आप ऑन करेंगे और अगर वो बहुत तेज उसमें से आवाज आ रही हो, तो जहां से आवाज आ रही है जब आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको एक भनभनाहट सी हाथ में महसूस होगी। इस प्रकार की जो कंपन होती है, जो भनभनाहट होती है, इसी को कंपन गति कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए गतिविधि 3 करने के लिए कहा गया है, जो कि पेज नंबर 87 पर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक लंबा धागा लेना है, आपको एक साइड से पकड़ के रखना है उसको, और दूसरी साइड से अपने दोस्त को बोलना है पकड़ने के लिए। दोनों बच्चे मिलके उसको धागे को बहुत टाइटली आपको पकड़ना है, बहुत तान के पकड़ना है, कस के पकड़ना है, और उसको तान के रखना है, खींच के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में से आप उसको उंगली से नीचे की ओर खींच दो और छोड़ दो। उसके बाद आप देखोगे कि आपका धागा जो है वो उसमें कंपन होने लग जाती है, और इसी प्रकार की जो गति होती है ऊपर नीचे जो बहुत तेजी से होने लग जाता है, इसी को हम कंपन गति कहते हैं। और कंपन गति में भी आप ये देख रहे हो कि धागा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपन गति जो होती है वो भी एक प्रकार की आवर्त गति की उदाहरण है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि कंपन गति में जो वस्तु होती है आगे पीछे जब वो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है, लेकिन आवर्त गति में वो थोड़ी देर बाद हो रही होती है, थोड़ा धीरे धीरे हो रही होती है। लेकिन कंपन गति में वो वस्तु आगे पीछे हो रही होती है लेकिन बड़ी तेजी से, फटाक से वो आगे आ जाती है, फटाक से पीछे चली जाती है, इस प्रकार की गति को हम कंपन गति कहते हैं। तो कंपन को आप सिंपल भाषा में भी समझ सकते हो, जब आप लोगों को ठंड लगती है बहुत ज्यादा जोर से, जब ठंड लगती है तो आपके दांत किटकिटाने लगते हैं ना, तो आपके दांत भी ऊपर नीचे फटाक फटाक से बंद हो रहे होते हैं, फिर खुल रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं, तो आप लोग कहते हो कि आप कपा रहे हो। तो इस प्रकार की जो गति हो रही होती है जिसमें आगे पीछे वस्तु हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, तो उसी को हम लोग कंपन गति कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया अभी अभी कि कंपन गति जो है वो एक प्रकार से आवर्त गति का उदाहरण है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि आवर्त गति में जो वस्तु आगे पीछे होती है वो काफी धीरे धीरे होती है, कुछ समय लेकर के होती है, लेकिन कंपन गति में वो गति जो होती है वो बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। अगली प्रकार की जो गति है वो है घूर्णन गति, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और यहाँ पर आपको गतिविधि 4 करने के लिए कहा गया है। गतिविधि 4 जो है ये भी पेज नंबर 87 पर है, बहुत इजी गतिविधि है। आपको क्या करना है, आपको आपके घर में साइकिल होगा, साइकिल को आपको स्टैंड पे लगा देना है पहले, और उसके बाद उसका पैंडल जो होता है उसको घुमाना शुरू कर देना है। जब आप लोग अपने साइकिल के पैंडल को घुमाना शुरू करेंगे तो उसका पहिया घूमने लग जाएगा, पीछे वाला, आगे वाला घूमेगा नहीं क्योंकि वो तो स्टैंड पे लगा हुआ होगा, तो पीछे वाला पहिया घूमने लग जाएगा। तो उस पहिए के घूमने के मोशन की जो गति है उसको आपको ध्यान से देखना है। उसमें जब आप देखोगे ध्यान से तो आप ये देखोगे कि जो पहिया है वो एक धुरी के चारों ओर घूम रहा है, वो तो फिक्स्ड है, किसी एक रॉड से जुड़ा हुआ है आपका पहिया, और वो पहिया तब घूम रहा है जब वो धुरी घूम रही है। तो धुरी के घूमने की वजह से जब आपका पहिया घूमता है, और इस प्रकार के गति को ही आप लोग क्या कहते हो, घूर्णन गति कहते हो। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं इसके, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू किस तरीके से घूमता है, लट्टू जो होता है वो एक नोक के ऊपर घूमता है, उसकी जो नोक होती है उसको आप लोग नचा देते हो रस्सी की मदद से, और वो जो लट्टू है उसी नोक के ऊपर घूमता है, तो उसमें भी वो जो नोक है वो धुरी का काम कर रही होती है, और पूरी की पूरी लट्टू जो है उस धुरी के चारों ओर घूम रही है, और इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इंग्लिश में इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है कुम्हार जो होता है, आप लोगों ने कभी कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार क्या करता है, जब अपनी चाक को चलाता है तो चाक जो होती है वो एक धुरी के चारों ओर घूम रही होती है, तो इस प्रकार की जो गति है इसको भी आप घूर्णन गति के उदाहरण के रूप में समझ सकते हो। यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 88 पर, आप लोगों को चित्र दिखाए गए हैं। एक आप लोगों को लट्टू की गति का चित्र दिखाया गया है, दूसरा आप लोगों को कुम्हार की चाक की गति का भी चित्र दिखाया गया है। अगर आप लोगों ने लट्टू की गति नहीं देखी होगी तो कुम्हार की गति देखी होगी, जो चाक की गति होती है उसमें भी अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों ने कभी धरती किस तरीके से घूमती है अपने धुरी के चारों ओर, वो आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आपने। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि धरती जो होती है वो दो प्रकार की गति दिखाती है। एक गति जो होती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, और दूसरी गति जो होती है आवर्त गति कहलाती है। दोनों प्रकार की गति का अंतर आप लोगों को मैं यहाँ पर आप ही के उदाहरण से समझा देती हूँ। आप लोग क्या करो, आप खड़े हो जाओ पहले, और अब आप लोग खड़े होके गोल गोल घूमना शुरू कर दो। जहां पर खड़े हो, जैसे आप लोगों को गोल घूमना तो आता ही होगा, गोल गोल घूमना शुरू कर दो, तो इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाएगी, वो घूर्णन गति कहलाएगी। अब आप क्या करो, अब अपने एक दोस्त को खड़ा करो और उसके चारों ओर आप घूमना शुरू कर दो, तो इस प्रकार की गति जो होगी वो आवर्त गति कहलाएगी। तो अंतर दोनों में ये है कि जब कोई वस्तु अपने धुरी के चारों ओर घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु किसी दूसरे पथ में घूमता है, ऐसे पथ में घूमता है जो कि वृत्ताकार होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, वो एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वृत्ताकार गति। तो इसी तरीके से धरती के केस में भी होता है, जो आपकी प्लैनेट है, धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो क्या करती है, वो दो प्रकार की गति दिखाती है। पहली गति में वो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, और दूसरी गति वो जो दिखाती है उसमें वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जब वो सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है, एक वृत्ताकार पथ में घूम रही होती है, और उस प्रकार की गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में ही आपको लग रहा होगा कि दोनों में तो गोल घूम रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि एक गति में, घूर्णन गति में, जो वस्तु है वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, और दूसरी वाली जो गति है, वृत्ताकार गति जो है, उसमें वस्तु जो है वो किसी धुरी के चारों ओर नहीं घूम रहा है, वो केवल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो केवल एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। कहीं पर भी अगर धुरी ना भी हो, बस कोई वस्तु ऐसे ही वृत्ताकार पथ में घूमना शुरू कर दे, तो हम उसे वृत्ताकार गति कहेंगे। लेकिन घूर्णन गति के लिए एक धुरी का होना आवश्यक है, जिस धुरी के चारों ओर उस वस्तु को घूमना है। तो आप लोगों को अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, घूर्णन गति में और वृत्ताकार गति में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा दी गई है घूर्णन गति की। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। तो अक्ष या फिर धुरी एक ही बात है, और धुरी क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, तो जो लट्टू की नोक होती है, कील जो होती है, तो लट्टू उस कील के चारों ओर ही घूमता है, उस कील के घूमने के वैसे घूमता है, तो उस कील को ही हम अक्ष या फिर धुरी कहते हैं। धरती में भी इसी तरीके से एक अक्ष या फिर धुरी होती है जिसके चारों ओर धरती घूमती है, और उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि धरती जब एक बार अपने घूर्णन कर लेती है अपनी धुरी के चारों ओर, तो 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, और जब धरती सूरज के चारों ओर एक बारी वृत्ताकार गति कर लेती है, पूरा सर्कल घूम लेती है, तो हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है, 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप लोग एक ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें कोई वस्तु एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर, वो सीधी लाइन में भी चल रही हो, इसका मतलब है कि वो सरल रेखीय गति भी कर रही हो और वो घूर्णन गति भी कर रही हो, ऐसा कोई उदाहरण आप लोग बता सकते हो? अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। साइकिल का जो उदाहरण होता है, साइकिल में क्या होता है कि साइकिल का पहिया जो होता है वो घूर्णन गति कर रहा होता है, लेकिन साइकिल सीधी सड़क पे चल रही होती है, तो साइकिल साथ में एक सीधी रेखीय गति भी दिखा रही है, सरल रेखीय गति भी दिखा रही है। तो जब हमारी साइकिल सीधी रोड पर चल रही होती है, उस वक्त वो दो प्रकार की गति दिखा रही होती है। पहली गति तो उसकी साइकिल जो होती है, पहिया जो होता है, वो गोल गोल घूम रहा होता है, घूर्णन गति कर रहा होता है, और दूसरा क्योंकि साइकिल हमारी सीधी सड़क पे चल रही होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो सरल रेखीय गति करती है। तो यहाँ पर आपको ये उदाहरण बता सकते हो, या फिर आप लोग बाइक का उदाहरण भी बता सकते हो, या फिर कार का उदाहरण भी बता सकते हो। जब कार का पहिया जो होता है, कार में भी इसी तरीके से पहिया होता है जैसे साइकिल में होता है, और कार भी सीधी रेखा में चल सकती है और उसी वक्त उसका पहिया भी घूमता रहता है, तो इसी तरीके से आप लोग इसका उदाहरण बता सकते थे। उसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है कि दूरी को हम लोग मापते किस तरीके से हैं। दूरी को मापने का तरीका क्या होता है? तो बच्चों, पुराने जमाने में जब दूरी को मापा जाता था तो अलग अलग प्रकार से मापा जाता था। जब छोटी छोटी दूरियां मापी जाती थी तो उसमें उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर जो बालिश्त होता है आपके हाथ का, बीता भी कहते हैं किसी किसी जगह पे, तो उसके इस्तेमाल से भी, जैसे बोलते हैं चार बीते का है ये जगह, तो इस तरीके से पहले मापा जाता था या फिर उंगलियों से मापा जाता था। और अगर जमीन पर मापना है तो लोग कदमों से मापते थे कि इतने कदम चल के हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे, इस तरीके से मापा जाता था। लेकिन इसमें त्रुटि थी, इसमें एक गड़बड़ थी, और वो गड़बड़ क्या थी ये आप लोगों को गतिविधि 5 के माध्यम से समझना है। गतिविधि 5 जो है वो पेज नंबर 88 पर है। यहाँ पर आप लोगों को एक सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है, सारणी 10.1, इसको आप लोगों को भरना है। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपनी विज्ञान की पुस्तक लेनी है, जो आपकी बुक है उसको ले लेना है, और आप लोगों को सभी बच्चों को एक एक करके उसकी लंबाई को अपनी उंगलियों से माप करके बताना है कि आपकी उंगलियों से मापने के बाद कितनी उंगलियां जो है वो आपकी बुक की लंबाई को कवर कर रही है। तो हर एक विद्यार्थी को ये बताना है। तो क्योंकि आप सभी बच्चों की हाइट अलग अलग होती है, बॉडी का साइज अलग अलग होता है, तो आपकी हाथ की उंगलियों का साइज भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए आप सभी बच्चों की जो मापने की रिजल्ट आएगी वो भी अलग अलग होगी। तो जो भी आप लोगों के रिजल्ट आए वो आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पर क्रम संख्या में लिख देना है, जितने भी बच्चे आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे होंगे मिलकर के। तो मान लो एक बच्चे का आ रहा है कि चार उंगलियां करके उसका आ रहा है कि चार उंगलियों में उसने बुक की लेंथ को मापा है, बुक की जो लंबाई है उसको मापा है, तो यहाँ पर आप लोग उस विद्यार्थी का नाम लिख दोगे और कितनी उंगलियां आ रही हैं उसको बुक को मापने में वो आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो उसके हाथ से मापा गया है उसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे। तो क्योंकि बुक की लेंथ तो सेम ही होगी, बुक जो आप लोग यूज कर रहे होंगे वो तो सेम ही लंबाई की होगी, इसलिए ये वाली जो लेंथ आएगी वो सेम आएगी। तो आप लोग क्या करोगे, जो पुस्तक की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर की है, मान लो 11 सेंटीमीटर की आपकी पुस्तक की लंबाई है, तो यहाँ पर पुस्तक की सेंटीमीटर में लंबाई आप लोग 11 सेंटीमीटर लिख दोगे। और आप सभी बच्चे जो है वो बारी बारी से अपनी उंगलियों से भी माप करके देखोगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि किसी भी वस्तु की लंबाई को मापना हाथ से या पैर से ये ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो हर एक व्यक्ति होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। तो इसीलिए मान लो किसी एक व्यक्ति ने जब किसी वस्तु को मापा था तो उसकी चार उंगलियां आई थी कि चार उंगलियों से ये वस्तु जो है उसकी लंबाई पूरी की जा सकती है। जब वो दूसरे व्यक्ति को बताएगा कि चार उंगलियां, मेरी चार उंगलियां जो हैं वो इस वस्तु की लंबाई हैं, तो वो तो केवल ऐसे ही बता देगा कि चार उंगलियां इस वस्तु की लंबाई है। उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति उस सेम वस्तु को मापेगा तो उसकी उंगलियों से उसकी लेंथ अलग आ जाएगी, उसकी लंबाई अलग आ जाएगी। तो इसीलिए क्या होता था कि पुराने जमाने में जैसे हम लोग हाथ से या पैर से नापते थे तो इसमें त्रुटि होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। और इसीलिए इस प्रकार की जो मेथड है, ये प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें आप लोग हाथ पैरों से किसी वस्तु की लंबाई को माप रहे हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें गलती ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आगे आप लोगों को दूसरी गतिविधि करने के लिए भी कहा गया है, गतिविधि 6। इसमें आपको क्या करने के लिए कहा गया है कि पहली गतिविधि में जो गतिविधि 5 थी इसमें तो आप लोगों ने वस्तु की लंबाई मापी, छोटी वस्तु की लंबाई मापी, बुक की लंबाई, और उसमें उंगलियों का इस्तेमाल आपने किया। इस बार आपको अपने कदमों का इस्तेमाल करके जमीन पर लंबाई मापनी है। आपको क्या करना है कि आप लोग कबड्डी वगैरह खेलते होंगे या फिर आपके प्लेग्राउंड में कोई भी आप लोग एक बॉक्स बना लो, एक स्क्वायर बना लो, और आप क्या करो कि हर एक बच्चे को बोलो कि वो अपने पैरों से कदमों से नाप करके बताएं कि उस बॉक्स की लंबाई कितने कदम चलने के बाद कवर हो रही है। अलग अलग बच्चे को अलग अलग लंबाई आएगी क्योंकि अलग अलग बच्चे की हाइट अलग अलग होती है, बॉडी की साइज अलग अलग होती है। तो जितनी भी कदम आ रहे हैं वो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सारणी दी गई है, सारणी 10.2 पेज नंबर 89 पर दिया गया है, इसमें आपको सारणी भरनी है। आप लोगों को जो भी बच्चे आप लोग ये कर रहे हो गए एक्टिविटी, आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 आपको दी गई है, इसमें आप लोग जितने भी बच्चे कर रहे होगे आप लोग अपना नाम लिख दोगे, और उसके बाद आप कदमों में बताओगे कि कितने कदम चल रहे थे, तो आप उसका लेंथ आ गया, लंबाई आ गई, आपने जो बॉक्स बनाया था उसकी लंबाई आ गई। और मीटर में भी आप लोगों को एक बार मेजर कर लेना है, इंची टेप वगैरह का इस्तेमाल करके आपको मीटर में भी मेजर कर लेना है, माप लेना है, उसके बाद उस बॉक्स की चौड़ाई भी आपको मापनी है, वो भी पहले कदमों से मापनी है और उसके बाद मीटर में मापना है कि कितना मीटर चौड़ा है आपका बॉक्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबका कंपेयर करना है, सबका आप लोगों को तुलना करनी है, अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग कदमों की साइज आ रही होगी। और ये कदमों की साइज अलग अलग आना कोई अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं, अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग आकार होता है बच्चों का। तो इसीलिए ये कहना कि हाँ ये घर जो है वो यहाँ से 10 कदम पर है, ये बिल्कुल सटीक नहीं है, इसमें त्रुटि है, इसमें गलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पैर की लंबाई अलग अलग होती है। तो अगर किसी एक व्यक्ति के 10 कदमों पे कोई घर आता है तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के 12 कदमों पे वो घर आता हो। तो इसीलिए ये प्रकार का जो मेथड होता था, ये प्रक्रिया जो है जिसमें आप लोग हाथ या पैरों से लंबाई को या दूरी को मापते थे पुराने जमाने में, इसमें गलती ज्यादा होने के चांसेस थे, इसमें त्रुटि थी, इसीलिए बाद में जाकर के अलग प्रक्रिया ढूंढी गई, अलग मेथड ढूंढा गया, ताकि सभी लोग चाहे कहीं पर भी बैठे हों, विदेश में किसी और देश में रहते हों, सभी लोग एक सेम ही लेंथ बताएं। कोई भी किसी जब वस्तु को मापे तो वो गलत लेंथ ना बताए, वो सेम लेंथ बताए। और इसीलिए स्केल को बनाया गया, स्केल का आविष्कार किया गया, क्योंकि स्केल की मदद से आप में से कितने भी बच्चे, मान लो आपके क्लास में 49 बच्चे हों, तो आप 49 बच्चे किसी एक किताब को मेजर करोगे, मापोगे स्केल की मदद से, तो आप सभी का आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्केल जो होती है उसकी लेंथ सेम होती है, उसकी लंबाई सेम होती है। तो इसीलिए इस बार गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि स्केल जो होता है उससे जब आप लोग मापते हैं तो उसमें गड़बड़ होने की बहुत कम चांसेस हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, बाकी की बात मैं अगली क्लास में करूंगी। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसको आपको खुद से एक बार रिवाइज कर लेना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।